नमस्कार भारत, तारीख 16 जुलाई दिन गुरुवार, मैं हूं वंदना। ग्रीस में संसद ने यूरोजोन के बेलआउट पैकेज की शर्तों को दी मंजूरी, लेकिन सांसदों के बीच हुई तीखी नोकझोंक।
टू आंद्रेया पापांद्रेयो, टू हेलमुट स्मिट, टू हेलमुट कोल।
फरागालो।
एफटीआईआई छात्रों के हड़ताल को लेकर संस्था ने छात्रों को दी चेतावनी और ले चलेंगे विशेष पार्लर में जो बना है खास कुत्तों के लिए।
जैसे हमें थकावट होती है और हम मसाज के लिए जाते हैं, वैसे आप अपने डॉग के लिए भी मसाज करवा सकते हैं। आप अपने डॉग का बर्थडे मनाना चाहते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे आप अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं।
होंगी खेल की खबरें भी, लेकिन सबसे पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, समीर आत्मज मिश्र से। ग्रीस की संसद ने यूरोपीय संघ की बेलआउट से जुड़ी कड़ी शर्तों को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित सुधार लागू करने को लेकर संसद में काफी गर्मागर्मी भी हुई। वोटिंग के दौरान प्रधानमंत्री सिप्रास ने दोबारा कहा कि वो शर्तों से सहमत नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। ग्रीस को 86 अरब यूरो की मदद मिलनी है। इस बीच ग्रीस की संसद के बाहर आर्थिक सुधारों का विरोध करने वालों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके और पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। फ्रांस के गृहमंत्री का कहना है कि एक सैन्य ठिकाने पर कथित तौर पर चरमपंथी हमले के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बर्नार्ड केजेनोवू ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में से एक 23 साल का पूर्व सैनिक भी शामिल है। सोमवार को 16 से 23 साल के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें फ्रांसीसी नौसेना का एक पूर्व सिपाही भी शामिल है। ये सभी लोग फ्रांसीसी सेना के ठिकानों पर चरमपंथी हमलों की योजना बना रहे थे। बर्नार्ड केजेनोवू के शब्द। राजस्व मंत्री का कहना था कि गिरफ्तार लोगों में से एक का संबंध कुछ चरमपंथी समूहों से भी था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी को देखते हुए सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 2-2 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी है। नई दरें बुधवार की आधी रात से लागू हो गई हैं। इस माह दूसरी बार दोनों ईंधनों के दाम घटाए गए हैं। यमन के दक्षिणी हिस्से में स्थित अदन शहर में सरकार समर्थित सैनिकों और हूती विद्रोहियों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। सऊदी सरकार के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने पड़ोसी शहर मुअल्ला में हवाई हमले किए हैं। ये हमले उस समय हुए हैं जबकि एक दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को गठबंधन सेनाओं ने फिर से अपने नियंत्रण में कर लिया। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। झारखंड के कोडरमा जिले के एक स्कूल में मिड डे मील खाने से 700 बच्चे बीमार हो गए हैं। कोडरमा के एसडीओ प्रभात कुमार बर्दियार ने इस घटना की पुष्टि की है। एसडीओ के मुताबिक बच्चों को खाने में उबले अंडे भी दिए गए थे और उन्हीं के कारण शायद बच्चे बीमार पड़े हैं। उनके मुताबिक 700 बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए उन्हें सरकारी सदर अस्पताल के अलावा कुछ निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। एसडीओ का कहना है कि स्कूल से अंडे जब्त कर लिए गए हैं और इन्हें जांच के लिए मुख्यालय भेजा जा रहा है। छोटे ग्रह प्लूटो की ताज़ा तस्वीरों से पता चलता है कि वहाँ पृथ्वी की ही तरह बड़े पहाड़ और गड्ढे हैं। इन तस्वीरों को अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लिया है। जानकारों का कहना है कि ये अब तक की प्लूटो की सबसे स्पष्ट और साफ तस्वीरें हैं। बांग्लादेश ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली है। इससे पहले बांग्लादेश घरेलू मैदान पर जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और भारत को भी हरा चुका है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में, मेरा वंदना का अभिनंदन स्वीकार कीजिए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ग्रीस से। ग्रीस की संसद में कल रात को जबरदस्त बहस हुई। यूरोजोन ने ग्रीस को आर्थिक मदद देने के लिए कुछ शर्तें रखी थी जिन्हें संसद को पारित करना था। संसद ने आखिरकार इन प्रावधानों को मंजूर कर दिया है। इनमें कर बढ़ाना और रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना शामिल है। लेकिन संसद में बहस के दौरान सांसदों में तीखी नोकझोंक हुई। सत्ताधारी सिरिज़ा पार्टी के अपने ही कई सांसद इस बेलआउट पैकेज की शर्तों के खिलाफ थे। एक मंत्री ने तो इस्तीफा तक दे दिया। देर रात तक चली इस बहस का ब्यौरा जुटा कर लाए हैं समीर आत्मज मिश्र।
काफी देर की गर्मा गर्म बहस के बाद आखिरकार ग्रीस की संसद ने यूरोपीय संघ की बेलआउट से जुड़े कड़ी शर्तों वाले विधेयक को मंजूरी तो दे दी, लेकिन बहस के दौरान ये साफ दिखा कि कोई ऐसा करना नहीं चाहता था। यहां तक कि वोटिंग के दौरान प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई और कहा कि वो शर्तों से सहमत नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। पैकेज को संसद से मंजूरी मिलने के बाद सिप्रास ने सांसदों का आभार जताया। मैं हर बात की जिम्मेदारी खुद लेता हूं और मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले कुछ सालों में हमारे सामने जो दिक्कतें आईं उनका हमने डटकर सामना किया, लेकिन हमें इस लड़ाई का बेहतर फल अवश्य मिलेगा। एलेक्सिस सिप्रास के शब्द। सिप्रास के समर्थकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, लेकिन कई सांसदों ने यूरोपियन यूनियन पैकेज का विरोध किया। इस बीच संसद के बाहर आर्थिक सुधारों का विरोध करने वालों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुईं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके और पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस मुद्दे पर संसद में हुई बहस से पहले पूर्व वित्त मंत्री यानिस वैरोफाकिस ने इन प्रस्तावों की तुलना जर्मनी की उन मांगों से की जो उसने पहले विश्व युद्ध की समाप्ति पर हर्जाने के लिए की थी। मजबूत लोगों ने हारे हुए लोगों से शर्तों को स्वीकार करने की मांग की है जो कि उनको अधिकार नहीं है, और हारे हुए लोगों ने उन बातों को स्वीकार किया है जिसे स्वीकार करने का उन्हें अधिकार नहीं है। ये वो शब्द थे जिन्हें जॉन मेनार्ड कीन्स ने वारसा की संधि के लिए इस्तेमाल किए थे। हम लोग भी अपने सामने वारसा की संधि जैसी ही शर्तें देख रहे हैं। ये थे पूर्व वित्त मंत्री यानिस वैरोफाकिस के शब्द। कई अन्य सांसदों ने भी उनकी बातों का समर्थन किया। इस बीच उप वित्त मंत्री नाडिया वालावानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे योजना को अपना समर्थन नहीं दे सकती। दरअसल ग्रीस को यूरोजोन से आर्थिक मदद का पैकेज लेने के लिए संसद को कई कड़े नए प्रावधानों को मंजूरी देना जरूरी था। कर्ज में डूबे ग्रीस को सोमवार को यूरोपीय संघ की तरफ से तीसरा बेलआउट पैकेज देने पर सहमति बनी थी।
तो आखिरकार संसद ने दी मंजूरी, लेकिन काफी गहमागहमी के बाद। ग्रीक संसद की मंजूरी के बाद अब आगे का क्या रास्ता है, ये जानने के लिए मैंने कुछ देर पहले बात की एथेंस में पत्रकार इरफान तैमूर से, जो रात भर इस बहस पर नजर रखे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि ग्रीस के लिए अब इसके क्या मायने हैं।
ग्रीस के जो हालात हैं वो अभी काफी मुश्किल हो जाएंगे। हुकूमत का जो क्वेश्चन था इससे पहले वो यही था कि जो रेफरेंडम हुआ था कि आया आप ये शरायत मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो 61% आवाम की ये राय थी कि हम ये शरायत नहीं मान सकते। उसके जो अलावा ये है कि जो गवर्नमेंट में डिस्प्यूट पड़ गया, गवर्नमेंट पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंटेरियन है वो इस चीज के, इस बिल के वो खिलाफ है, वो हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं। इनमें बड़े बड़े नाम मिनिस्टर्स हैं, जो स्पीकर हैं, जो लेडी स्पीकर है पार्लियामेंट की, वो सेपरेट हो गई है। और इस तरह ये कैफियत ऐसी है कि चुटकी काटो तो लहू नहीं, तो ऐसे है कि पूरी आवाम परेशान है और सख्त बेचैनी के आलम में ये सारी सूरत हाल देख रही है कि ये क्या हो रहा है।
जी, जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने खुद कहा कि वो खुद भी सहमत नहीं है, अग्री नहीं करते हैं, लेकिन उनको करना पड़ रहा है, और उनके जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्री, वो उनसे खफा हैं। तो उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन इससे कितनी कमज़ोर हुई है?
जो प्रधानमंत्री यूनान के एलेक्सिस सिप्रास, वो पहले काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, वो लोगों नौजवान थे, यंग थे, लोग उनको बड़ा लाइक करते थे। जो उस प्रपोजल जो लेके गए हैं वो उस पर अपने पर डट जाएंगे, तो एक वो मिस्ट्रियस चीज है अंदर, वो क्या हुआ, डर था, खौफ था, इनके ऊपर तारी हो गया, किस वजह से ये जो यूरोजोन के अपने प्रपोजल की बजाय उनके प्रपोजल को ये जो मान गए हैं उस पर इन्होंने यस कर दिया।
आखिर में जानना चाहेंगे कि आगे का रास्ता क्या है, जो दूसरे देश हैं, जर्मनी है, अपने अपने संसद हैं, जो पार्लियामेंट्स हैं, वहाँ पे भी इसको, इसमें बहस होगी ये इस प्रपोजल को लेके।
यूरोजोन जो है वो 18 कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज, तो जो यूरोजोन के मेंबर पार्लियामेंट, हर की जो पार्लियामेंट में ये बिल जाएगा, तो हर मुल्क की गवर्नमेंट चाहेगी पास करवाएगी हर तरीके से।
एथेंस से पत्रकार इरफान तैमूर, जो बता रहे थे कि अभी भी बहुत पेचीदा हैं ग्रीस के हालात। रुक करते हैं भारत का। पुणे के प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के छात्र पिछले करीब एक महीने से हड़ताल पर हैं। संस्था के छात्र टीवी कलाकार गजेंद्र चौहान की FTII के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। अब संस्था के निदेशक DJ नारायण ने पत्र लिखकर हड़ताल कर रहे छात्रों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने हड़ताल वापस नहीं ली तो उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। छात्रों का कहना है कि गजेंद्र चौहान के पास इस पद को संभालने की योग्यता ही नहीं है। हमारे सहयोगी विनीत खरे ने DJ नारायण से इस चेतावनी पर लेकर बातचीत की।
मैंने उनको वार्न किया है लेटर में कि अगर ये स्ट्राइक कंटिन्यू रही तो एडमिनिस्ट्रेशन कैन टेक स्टिफ डिसिप्लिनरी एक्शन, जिसमें रेस्टिकेशन भी किया जा सकता है।
तो क्या माना जाए कि दोनों जो पक्ष हैं उनके बीच में कोई समझौते जैसी स्थिति अभी तक?
ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट, हो सकता है कल कुछ बात हो जाए, वी डोंट नो अबाउट दैट पार्ट। इतने दिनों से चल रहा था कि इट इज इंडिपेंडेंट, ये तो वार्निंग इशू करना तो जरूरी है ना, इट्स अ नोटिस, इट इज नॉट दैट दे हैव बीन रेस्टिकेटेड टुमारो।
तो आपने ये लेटर, जो मुझे जानकारी है वो स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं नाचिमुथु, उन्हें एड्रेस किया है, लेकिन ये लागू सब पर होता है?
जी, सब उस पे लिखा है कि ऑल स्टूडेंट्स हु आर कंटिन्यूइंग टू नॉट गो टू द क्लासेस, उन पे ये कार्रवाई की जा सकती
है। जी, ये जो स्ट्राइक हो रही है सर, ये हमें बताएं, इससे जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ की पढ़ाई है, वहाँ के कोर्सेज हैं, उनको किस तरह से नुकसान पहुँच रहा है?
TI में करीब 350 बच्चे नॉर्मल रहते हैं, पर इस वक्त कैंपस में करीब 200 हैं, तो उसमें से करीब ऑलमोस्ट सबने एक आध को छोड़ के ये लिख के दिया है और वो स्ट्राइक में सम्मिलित रहे हैं, क्लास नहीं जाएंगे, ये चीज है।
तो आज की डेट में क्लासेस बिल्कुल बंद है, कोई क्लास नहीं हो रही है?
जी,
मैंने अभी हाल में नसीरुद्दीन शाह की किताब पढ़ी, जिस ऑटोबायोग्राफी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि उनके ज़माने में एक बार स्ट्राइक हुई थी और किस तरह से, मतलब काफ़ी लंबी चली और उनकी डिमांड थी और फिर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने हैंडल किया। गिरीश कर्नाड थे उस वक्त, और गिरीश कर्नाड ने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं कि कैसे उन्हें बुलाया गया किसी तरह से और उसके बाद से। तो क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जिसमें रेस्टिगेशन भी ना हो, आपकी तरफ से कोई कोशिश हुई?
कर्नाट साहब वाला डिसीजन वो इंस्टीट्यूशनल डिसीजन था विद इन द कैंपस, गवर्नमेंट इंडिया वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन इट। ये स्टूडेंट्स का FTII के अंदर की किसी इशू का मुद्दा नहीं है कि गवर्निंग काउंसिल, ये मतलब विद इन FTII का नहीं है। इन्होंने स्टूडेंट्स लोगों ने सरकार के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया, जो भारत सरकार है, तो ये मुद्दा वहां पर आ रहा है। सरकार का अधिकार है कि वो ये, और हक है कि वो अपने उसको चेयरमैन और सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूट करे। सारी सरकार ऐसी करती आई पिछले 50 साल में, स्टूडेंट उनको मानने को तैयार नहीं कि हम आपकी बात नहीं मानते, तो सरकार भी सोच सकती है कि भाई आप कौन बोलते हैं बोलने वाले, कल आप ये भी डिसाइड करेंगे कि आपकी और भी बड़ा मंत्री कौन हो, सेक्रेटरी कौन हो, ये तो कोई स्टूडेंट ये थोड़ी डिसाइड करते हैं मेरा प्रिंसिपल कौन हो।
अगर रेस्टिगेशन होता है और अगर मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ता है आपको नारायण साहब, तो ये कितना अनप्रेसिडेंटेड होगा? कभी इस तरह की
इट इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, में वाकई इसको बात जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि ये बड़ा भयावह प्रश्न है और अच्छा नहीं प्रश्न है।
हाँ, मतलब 250 बच्चे हैं, मतलब फिर कुछ तो आपने आगे का रास्ता सोचा होगा कि अगर ये कदम, क्योंकि ऐसी कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि कहीं स्ट्राइक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज कितने 34-35 दिन हो गए हैं आज, तो और आपने कितना उनको कितना टाइम पीरियड कितना दिया है कि आप
देखिए, अभी देखिए रेस्टिगेशन नहीं किया, ये वार्निंग दी गई है। ये वार्निंग जो किताबों में लिखी रहती है जब बच्चे हैंड टू जाते हैं कि डिज्यूल बी लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप ये काम करेंगे होगा, क्लासमेट नहीं आएंगे तो फेल होंगे, एग्जाम में पास नहीं करेंगे, 50% नहीं आएंगे तो फेल, ये उसी तरीके की नोटिस दी गई है।
लेकिन कोई वक्त, कोई टाइम पीरियड दिया है आपने कि इतने वक्त तक
आप? वो नहीं दिया गया, उनको बस सूचना दी गई है कि ये हो सकता है, कृपया ध्यान दें इस बात।
लेकिन आप कब तक एक्शन ले सकते हैं सर,
इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं बात करना चाहूंगा, मुझे पता नहीं।
तो ये थे FTII के निदेशक, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने छात्रों को चेतावनी दी है कि वो हड़ताल जल्द खत्म करें। कहते हैं कुत्ते इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, बेस्ट फ्रेंड। जब सब साथ छोड़ दें तो भी आपका पालतू कुत्ता आपका दामन नहीं छोड़ेगा, और जब ये आपसे इतना प्यार करते हैं तो कुछ दुलार देना तो अपने पालतू कुत्तों को बनता ही है। अब पालतू जानवरों के लिए शहरों में पार्लर आ गए हैं। जानवरों को पार्लर में उनका जन्मदिन मनाया जाता है, उनके लिए पार्टियाँ की जाती हैं। यहाँ इंसानों के बच्चों की तरह ही जानवरों का भी ध्यान रखा जाता है। पेश है डॉग पार्लर पर प्रियंका मुखर्जी और इशिता तिवारी की ये विशेष रिपोर्ट।
हेलो, रेड पॉस पर।
हेलो, मैं मिसेस मुखर्जी बोल रही हूँ, बॉडी स्पा के लिए मेरी 2 बजे की अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए।
ओके मैडम, डन।
आप सोच रहे होंगे मिसेस मुखर्जी ने अपने लिए एक पार्लर में अपॉइंटमेंट फिक्स की है, लेकिन सच तो ये है कि ये अपॉइंटमेंट उन्होंने अपने कुत्ते के लिए ली है। जी हाँ, अब इंसानों के लिए ही नहीं, हमारे चार पैरों वाले साथियों के लिए भी पार्लर्स आ गए हैं। कैसे होते हैं ये पार्लर, ये जानने के लिए हमने बात की रेड पॉस पा की मालिक साक्षी सोंधी से।
बातन हेयरकट इज अ मेन थिंग्स एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे पास ग्रूमिंग पैकेजेस होते हैं, जैसे ऑयल मसाज होता है कोट को सॉफ्ट करने के लिए, कंडीशनिंग ट्रीटमेंट है, हॉट पैक है।
ऐसे ही एक दूसरे पार्लर कैनाइन एलीट की मालिक सोनिया कोचर कहती हैं,
डॉग्स के लिए ज़्यादा पॉपुलर है मैनिक्योर पेडिक्योर, लोग अपने डॉग्स का मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते हैं। अब कलरिंग भी स्टार्ट हो गई है जो कि काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपके डॉग के बाल सफ़ेद हैं और आप उसको लाल करना चाहें तो अब वो कॉन्सेप्ट आ गया है, वो अवेलेबल है। मसाजेज अवेलेबल है, जैसे हमें थकावट होती है और हम मसाज के लिए जाते हैं, वैसे आप अपने डॉग के लिए भी मसाज करवा सकते हैं। तो हाँ, आपके डॉग्स को भी बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है।
विदेशों में भले ही आम बात हो, लेकिन भारत में पेट पार्लर्स या डॉग पार्लर्स का कॉन्सेप्ट फिलहाल नया है। कुत्तों के लिए अलग अलग हेयर स्टाइल्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, स्पा ट्रीटमेंट जैसी सुविधाएं अब यहाँ भी उपलब्ध है। साक्षी सोंधी से जब हमने पूछा कि कुत्तों की ग्रूमिंग इतनी जरूरी क्यों है, तो वो बोली,
आपको आपका नहाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है।
वहीं सोनिया कोचर मानती है कि जैसे छोटे बच्चों का ध्यान रखा जाता है, वैसे ही पालतू जानवरों की साफ सफाई जरूरी है।
जैसे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाती हैं, उसी तरह से डॉग्स और कैट्स को भी इन्फेक्शन होती है। तो अब वो कॉन्सेप्ट आ गया है, लोग समझते हैं उसके बारे में। लोगों ने डॉग्स रखे हुए हैं घर में और वो उनको वैसा ही प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं जैसे अपने बच्चों को देते हैं।
दिल्ली में रहने वाली मिसेस बृष्टि मुखर्जी भले ही 3 महीने में 2 बार पार्लर जाएं, लेकिन अपने कुत्ते को वो महीने में 1 बार डॉग पार्लर ले जाना नहीं भूलती।
मेरे पास 3 कुत्ते हैं और मैं देखती हूँ कि हर महीने उनका अच्छा सा ग्रूमिंग हो, उनके लिए ऑयल मसाज देते हैं, एरोमा थेरेपी देते हैं, उनको पार्लर में बहुत अच्छे तरीके से पैम्पर किया जाता है।
कुत्तों के लिए अब पार्लर्स के अलावा डे बोर्डिंग्स का भी इंतजाम है, जहाँ पे डॉग्स का ख्याल रखा जाता है जब उनके ओनर्स अपने काम या वेकेशन पर जाते हैं। उनके रहन सहन, खाने पीने और उन्हें खुश रखने की जिम्मेदारी इन्हीं डे केयर्स की होती है। इस कॉन्सेप्ट से दिल्ली में रहने वाली पूजा की परेशानियां काफी कम हुई है।
80% परेशानियां कम हो गई हैं, बहुत हद तक हो गई हैं। बिकॉज जब भी ट्रैवल करती थी मुझे यही स्ट्रेस रहता था कि मैं गब्बर को कहाँ छोड़ूं। अब मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, आराम से मैं बैठ के अपने काम में फोकस कर सकती हूँ। मुझे डेली अपडेट्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, वीडियोज आते हैं गब्बर के, एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी विजिट करते हैं एंड देर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि गब्बर बहुत खुश है, वो तेरे को मिस नहीं कर रहा है। अच्छा लगता है मुझे सुनना।
इन डॉग पार्लर्स और डे बोर्डिंग्स में कुत्तों के लिए बर्थडे पार्टी, थीम पार्टी, पूल पार्टी और फैशन शोज भी आयोजित किए जाते हैं।
ज़्यादातर डॉग इवेंट्स में डॉग बर्थडे पार्टीज होती हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं। आप अपने डॉग का बर्थडे मनाना चाहते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे आप अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, आप केक ऑर्डर करते हैं, आप उनके दोस्तों को बुलाते हैं।
डॉग पार्लर्स की दुनिया बहुत हसीन दिखती है, लेकिन ये भी सच है कि इन सुविधाओं के दाम कम नहीं और कुछ ही लोग हैं जो इन्हें खरीद सकते हैं। जो भी हो, बॉडी स्पा और स्विमिंग का मजा उठाते कुत्तों को देखकर एक बार भी उनसे रश्क जरूर होता है।
ये रिपोर्ट हमें जरूर बताइएगा। और अब खेल की खबरें।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। खेल की खबरों में सबसे पहले बात एशेज सीरीज की। एशेज सीरीज में 1-0 से पिछड़ रही ऑस्ट्रेलियाई टीम की नजर आज से लॉर्ड्स में शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच से बराबरी पर होगी। विकेटकीपर ब्रैड हैडन के आकर्षणों से बाहर होने से जूझ रही ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे टेस्ट से शेन वॉटसन को भी बाहर कर सकती है। वॉटसन कार्डिफ में खेले गए पहले मैच की दोनों पारियों में LBW आउट हुए थे। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच चौथे ही दिन 169 रन से जीत लिया था। 34 साल के वॉटसन को लॉर्ड्स टेस्ट से बाहर कर उनकी जगह ऑलराउंडर मिशेल मार्श को टीम में रखा जा सकता है। वॉटसन पिछली 16 पारियों में सिर्फ 2 ही अर्धशतक लगा पाए हैं। वहीं इंग्लैंड की टीम में भी लॉर्ड्स टेस्ट के लिए एक बदलाव हो सकता है। उसके स्पिनर मोइन अली मांसपेशियों में खिंचाव महसूस कर रहे हैं। अगर उन्हें बाहर बिठाया जाता है तो उनकी जगह अदिल राशिद अपना पहला टेस्ट मैच खेलते नजर आएंगे। इंग्लिश टीम के लिए उसके सलामी बल्लेबाज एडम लिथ ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए थे। उन्होंने दोनों पारियों में 6 और 37 रन की पारी खेली थी। इस बार वो इससे बेहतर करना चाहते हैं।
मैं अपना नेचुरल गेम खेलूंगा। अगर गेंद हिट करने लायक होगी तो मैं जरूर हिट करूंगा। अगर गेंद अच्छी होगी तो जरूर उसे छोड़ना होगा, लेकिन हमें अपने ताकत के अनुसार खेलना होगा। मैं आक्रामक बल्लेबाज हूँ, लेकिन मुझे परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करनी होगी।
और वहीं न्यूजीलैंड के हाथों T20 सीरीज गंवा चुकी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आखिरी T20 में सांत्वना जीत मिली। भारत ने ये मुकाबला 3 विकेट से जीता। बेंगलुरु में खेले गए आखिरी T20 में न्यूजीलैंड को 126 रन पर रोकने के बाद भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर एक ओवर शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। राजेश्वरी गायकवाड़ ने 17 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं बल्लेबाजी में वेदा कृष्णमूर्ति ने 19 गेंदों पर 34 रन बनाए। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और बात जब खेल समाचारों की हो रही है तो बांग्लादेश की बात करना जरूरी है। बांग्लादेश ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली है 2-1 से। इससे पहले बांग्लादेश हरा चुका है लगातार जिम्बाब्वे को, पाकिस्तान को, भारत को, यानी ये चौथी उनकी जीत है घरेलू मैदान पर। मैच जो था वो बारिश से प्रभावित रहा, 40 ओवरों का रहा, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने 9 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए और डकवर्थ लुइस के नियम के अनुसार बांग्लादेश को 170 रन बनाने थे, लेकिन बांग्लादेश ने 26वीं ओवर में ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। यानी कि आप समझ सकते कितनी आसानी से उसने ये मैच जीता और 9 विकेट से जीता, यानी केवल 1 विकेट गवाई। तमीम इकबाल 61 रन बनाकर नाबाद रहे तो सौम्य सरकार ने शानदार 90 रन बनाए, वे मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। शाकिब अल हसन और मशरफ़ मुर्तज़ा ने अपने करियर के 200 विकेट भी पूरे किए। पूरे मैच में बांग्लादेशी गेंदबाजों का दबदबा रहा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बांग्लादेश की ये पहली सीरीज जीत है, तो शानदार फॉर्म में चल रही है बांग्लादेश की टीम। और अब बात कर लेते हैं आईपीएल से जुड़े विवाद की। आईपीएल क्रिकेट में सट्टेबाजी की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति ने चेन्नई सुपर किंग्स के गुरुनाथ मैयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के सह मालिक राजकुंद्रा पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। 2 टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन इस सब में एक सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये कि अधिकारियों और टीमों के खिलाफ तो कार्रवाई हुई है, लेकिन खिलाड़ियों पर जो सवाल उठे थे वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। इस बारे में बीबीसी संवाददाता पंकज प्रियदर्शी ने बात की वरिष्ठ खेल पत्रकार प्रदीप मैगजीन से।
देखिए, ये जो एक जो सीक्रेट एनवेलप जो जस्टिस मुडगिल ने सुप्रीम कोर्ट को दिया था बेस्ड ऑन बीबी मिश्रा जी जो प्रोब कर रहे थे पुलिस ऑफिसर, वो अभी तक उसका कंटेंट क्या है स्पेकुलेशन ही है। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें 12 खिलाड़ियों के नाम हैं जो फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है। तो ये कहना कि उसमें मतलब जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये तथ्य है, ये सच है कि उसमें ऐसे खिलाड़ियों के नाम इन्वॉल्व हैं, गलत होगा। अब क्यों ये नाम ये एनवेलप पब्लिक नहीं किया गया है, इसके कारण होंगे, जहां तक मेरे नॉलेज है और मैं गलत हो सकता हूँ, इस एनवलप में उन खिलाड़ियों कई खिलाड़ियों पे जैसे जब प्रोब होती है तो लोग आके एलिगेशन लगाते हैं, इन्होंने उन खिलाड़ियों को प्रोब किया होगा, पता किया होगा। और जहां तक मेरा मानना है शायद इन्होंने मेजॉरिटी खिलाड़ियों के बारे में लिखा कि नहीं, इनको कोई ऐसा प्रूफ मिला नहीं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है। कारण ये हो सकता है कि पब्लिक नहीं किया जा रहा है कि अब वो खिलाड़ियों के नाम पब्लिक होंगे, और इन्होंने हालांकि ये कहा कि ये इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी अटकलें लगाई जाएंगी कि इन पे प्रोब हो रही थी। दूसरा, जहां तक मैंने सुना है कि उसमें एक खिलाड़ी का नाम जरूर है जिसपे ये कहा गया है कि उनपे फर्दर प्रोब होनी चाहिए। इनको कोई कंक्लूसिव एविडेंस उस खिलाड़ी के खिलाफ मिला नहीं है, लेकिन इनका शक है कि शायद कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसको कि प्रोब किया जाए ये पूरा तथ्य एस्टेब्लिश करने के लिए क्या वो खिलाड़ी इन्वॉल्व है कि नहीं।
लेकिन प्रदीप जी, मैं ये पूछ रहा था कि बड़े खिलाड़ी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। सचिन ने आज तक मैच फिक्सिंग का सागा इतना बड़ा हुआ, आज तक मुझे तो याद नहीं कि उन्होंने कभी खुल के इस पर कोई अपनी राय भी दी हो। ठीक है, मुंबई इंडियंस पे सवाल नहीं उठे हैं, लेकिन एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते, बहुत पहले हंसी क्रोनिए का जब मामला हुआ था तब उन्होंने एक बड़ा सा जनरलाइज स्टेटमेंट दे दिया था कि मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा था। इसके अलावा
हिंदुस्तान में ऐसा क्रिकेट का स्ट्रक्चर है या हायरार्की का स्ट्रक्चर है जिसमें एक एक तरीके से सब लोग अथॉरिटी से डरते हैं, पावर से डरते हैं, तो सबको लगता है कि अगर हम कुछ ऐसा बोल दें जिससे बोर्ड नाराज हो जाए, या जो एक स्टेटस को की नैया जो चल रही है वो डगमगा ना जाए, इसकी वजह से सीनियर प्लेयर्स भी एक तरीके से टिमिड हो जाते हैं, जो जहां उनको बोलना चाहिए वहां बोलते नहीं हैं। और मैं समझता हूं कि ये गलत बात है, क्योंकि सीनियर खिलाड़ियों को कोई उनकी जो साख है लोगों में, उनकी जो स्टेटस है वो ऐसा है कि उनको बोर्ड जो है कोई ऐसे तंग नहीं कर सकता है। तो उनको चाहिए बड़े मुद्दों पे, सचिन जैसे खिलाड़ियों को, बाकी खिलाड़ियों को जरूर पब्लिक के सामने आना चाहिए, और अगर उनको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो वो कहना चाहिए, वो उनके लिए भी और देश की स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छा रहेगा।
तो ये थे वरिष्ठ खेल पत्रकार प्रदीप मैगजीन, जो कह रहे थे कि वरिष्ठ खिलाड़ियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो विवादित मुद्दों पर अपनी बात कहें, और उनसे बात कर रहे थे पंकज प्रियदर्शी। जी, खेल की खबरें हो गई और अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का, और स्टूडियो में मौजूद हैं समीर आत्मज मिश्र। जी समीर।
वंदा जी, आज अखबारों में कल जो नीति आयोग की बैठक हुई और प्रधानमंत्री के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, उसकी चर्चा लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से की है। जनसत्ता लिखता है, गरीबी मिटाने के लिए केंद्र के साथ काम करें राज्य मोदी, जमीन पर फिर मनाया मोदी ने, ये खबर है। नवभारत टाइम्स की अखबार लिखता है कि कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का बहिष्कार, लेकिन मीटिंग में नीतीश और केजरी शामिल, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं, वो तस्वीर भी छापी है अखबार ने। और यही तस्वीर नरेंद्र मोदी के साथ कई मुख्यमंत्रियों की तस्वीर छापी है द हिंदू ने, और इसी खबर को उसने प्रमुखता से जगह दी है, लीड खबर बनाया है। तो लगभग सभी अखबारों में देख रहा हूँ इसकी चर्चा है। उसके अलावा और एक जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है वो दिल्ली से सटे गुड़गांव की है, जहाँ पे कल दो गुटों में लड़ाई हुई और उसमें गैंग वार जैसा हुआ। जी हाँ, और गुड़गांव में फायरिंग के बाद क्रैश, तस्वीरें दिखाई हैं, छापी हैं नवभारत टाइम्स ने, द हिंदू ने,
काफी इसके लोग,
हाँ, कि कार के नीचे एक ऑटो दबा हुआ है उस तरह से। और खेल खत्म हुआ, CL T20 यानी चैंपियंस लीग 2020 का चैंपियंस लीग ख़त्म हो गई है। जैसा अभी आपने बताया कि IPL पे कुछ लोगों पे प्रतिबंध लगा, कुछ टीमों पे लगा, तो चैंपियंस लीग को भी अब ख़त्म करने का फैसला किया गया है।
जी, और कारण ये शायद बताया गया है कि उतनी लोकप्रिय नहीं,
बिल्कुल, और इसी बात को द हिंदू ने अपनी हेडलाइन यही बनाई है कि लो पब्लिक इंटरेस्ट किल्स CL T20, यानी कि लोगों का बहुत उसमें बहुत दिलचस्पी नहीं रह गई थी, जिसकी वजह से उसको ख़त्म करना पड़ा या बंद करना पड़ा। जनसत्ता की एक खबर है, नक्सलियों ने अगवा जवानों की हत्या कर शव सड़क पर फेंके, छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में नक्सलियों ने जिन पुलिसकर्मियों को अगवा किया था उनकी हत्या कर दी, और
हमने रिपोर्ट भी सुनवाई थी कि कैसे लगातार लापता हो रहे हैं। जी हाँ,
उसको बड़ी प्रमुखता से जगह दी है। दूसरे अखबारों में भी ये खबर छपी हुई है, याकूब मेमन को फांसी पर लटकाने की तैयारी, मुंबई विस्फोट के दोषी, जनसत्ता में बड़ी सी तस्वीर के साथ इस खबर को छापा है, और द हिंदू ने भी, दूसरे अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। एक खबर का जिक्र करेंगे, दैनिक भास्कर की लिखता है अखबार की 70,000 पेड़ों को 9 देशों से 5,000 ईमेल।
जी?
मेलबर्न, ये हाँ, ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की। मेलबर्न में पेड़ों को काटने हटाने के लिए बनाई गई एक आईडी पर दुनिया भर से आ रहे हैं पेड़ बचाने के संदेश। मेलबर्न की नगर परिषद के अधिकारी भी हैरान हैं इस बात को लेकर के, और उनको भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि
इस तरह से
इतनी लोकप्रियता इसको मिलेगी। जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीर अखबारों पर नजर डालने के लिए। और अब आखिर में सुन लेते हैं विश्व समाचार समीर आत्मज मिश्र से ही।
BBC समाचार। ग्रीस की संसद ने यूरोपीय संघ की बेलआउट से जुड़ी कड़ी शर्तों को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित सुधार लागू करने को लेकर संसद में काफी गर्मा गर्म बहस भी हुई। फ्रांस के गृहमंत्री का कहना है कि एक सैन्य ठिकाने पर कथित तौर पर चरमपंथी हमले के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यमन के दक्षिणी हिस्से में स्थित अदन शहर में सरकार समर्थित सैनिकों और हूती विद्रोहियों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। झारखंड के कोडरमा जिले के एक स्कूल में मिड डे मील खाने से एक साथ 100 बच्चे बीमार हो गए हैं। प्लूटो की ताज़ा तस्वीरों से पता चला है कि वहां पृथ्वी की ही तरह बड़े पहाड़ और गड्ढे हैं। इन तस्वीरों को अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लिया है। जानकारों का कहना है कि ये अब तक की प्लूटो की सबसे स्पष्ट और साफ तस्वीरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी को देखते हुए सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 2-2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। BBC समाचार।
तो इसके साथ ही अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो चुका है। तो मुझे वंदना को दीजिए इजाजत। आज स्टूडियो संभाला था देवाशीष ने। अब आपसे अगली मुलाकात होगी ठीक एक घंटे बाद।